जय सतगुरुदेव, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं श्रीरंग आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करता हूं और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं भी। आज का ये जो सत्संग है हमारे लिए एक विशेष सत्संग है, क्योंकि हम सब जानते हैं दिसंबर 17-18 दिसंबर को 2023 में विहंगम योग का 100वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। तो इस सत्संग में हम उन साधकों का अनुभव सुनेंगे जिन्होंने जिन जिनको ये सौभाग्य मिला कि उस वार्षिक उत्सव में वो सहभाग ले और सद्गुरुदेव का आशीर्वाद कृपा प्रसाद ले। शुरुआत करने से पहले मैं सद्गुरु चरणों में प्रार्थना अर्पण करना चाहूँगा। आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ आप प्रार्थना गाएं। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहो। तो हम सब जानते हैं कि दिसंबर 17-18 को स्वर्वेद महामंदिर धाम के प्रांगण में शताब्दी महोत्सव मनाया गया। उसमें 25,000 कुंडीय स्वर्वेद महाज्ञान यज्ञ का भी संपादन हुआ। तो काफ़ी सारे साधक हैं जो कि उस जिनको ये सौभाग्य मिला कि वो वहाँ जाकर खुद उसको एक्सपीरियंस करे, उसका अनुभव ले। तो हम मैं पहले मैंने कुछ इमेजेस का कलेक्शन है जो मैं पहले शेयर करना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम इस फोरम को ओपन करेंगे ताकि जो भी साधक अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो आगे आकर उसको शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं कि 25,000 कुंडीय यज्ञ भी उस समय स्वर्वेद महामंदिर के प्रांगण में किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि स्वर्वेद महामंदिर का जो प्रांगण है वो कितना विशाल है। ये जब इस शताब्दी महोत्सव की जब घोषणा की गई थी तब संत प्रवर जी ने कहा था कि हम इस शताब्दी महोत्सव को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाएंगे। तो मुझे कोई शंका नहीं है कि जो साधक बतलाएंगे तो वो भव्यता तो हमने देखी, बट दिव्यता की जो बात है वो हम साधकों के एक्सपीरियंस से हम सुनेंगे आज। इस शताब्दी महोत्सव में स्वर्वेद महामंदिर का लोकार्पण भी हुआ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते। तो वो भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक इवेंट था विहंगम योग के लिए, क्योंकि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने जो विहंगम योग की ज्योति जलाई 1924 में, वो अब पिछले 100 सालों से अखंड जलती आ रही है और आगे भी वो ऐसे ही हमें प्रकाशित करती रहेगी। और स्वर्वेद महामंदिर है एक बहुत ही विशाल और भव्य दिव्य ऐसा मंदिर है जो सिर्फ देश भर के ही नहीं पर दुनिया भर के लोगों के लिए एक अध्यात्म का शिखर है, जो वहाँ आकर सब लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत कर सकते हैं या उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है ये मंदिर। इसमें ये आई थिंक मुझे ये पता नहीं है कि ये उसी समय लिया गया था फोटो या पहले का है, बट आप देख सकते हैं कि कितना भव्य और दिव्य मंदिर है। इसमें 7 मंजिलें हैं। ये जो ये फोटो आप देख रहे हैं इसमें स्वागत की तैयारियां हो रही है स्वर्वेद महामंदिर के सामने। यहाँ पर स्वामी जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, संत प्रवर जी और नामदेव जी महाराज, इनका आप देख सकते हैं सुरवेद महामंदिर के सामने। इस फोटो में प्रधानमंत्री जी ने सुरवेद महामंदिर का अन्वेषण किया। उन्होंने वो जितने भी उनके नक्काशी है, जितने भी स्टैचूज वगैरह है, उन्होंने उसको भी देखा। और आप देख सकते हैं कि स्वामी जी भी उनके साथ हैं। ऐसी कुछ सारी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सुरवेद महामंदिर कितना भव्य दिव्य है। आप देख सकते हैं कि कितना कितना विशालतम दिख रहा है सुरवेद महामंदिर। ये स्वामी जी की मूर्ति भी है जिसका अनावरण किया गया सुरवेद महामंदिर का जब अनावरण हुआ तब। और कितनी सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में स्वामी जी हैं। ये थोड़ा सा दूर से उसका फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नक्काशी है, कितना भव्यतम ये फ्लोर दिख रहा है और कितनी स्वामी जी की सुंदर मूर्ति दिख रही है इसमें। ये है सुरवेद महामंदिर रात के समय में, इतना सुंदर दिख रहा है लाइट लाइट लगा के। ये जो है ये है सौभाग्यशाली जो साधक है जिनको ये अवसर मिला कि वहां जाकर खुद उस इवेंट का पर्सनली वो एक्सपीरियंस ले। तो ऐसे काफी सारे फोटोज हैं, मैं जितने मैं व्हाट्सएप से डाउनलोड कर पाया मैंने किए हैं। सारे फोटोज तो मैं नहीं डाल पाया इस स्लाइड में, बट मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मैं फोटो यहाँ पे डालूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट्स भी लगाए गए थे। स्वामी जी ने ये ऐसा निर्देश था कि जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको कोई तकलीफ ना हो, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। और इतना सौभाग्य था लोगों का कि उनको सुरवेद महामंदिर के इतने पास रहने का मौका मिला। तो आप सोच सकते हैं कि कितने आध्यात्मिक परमाणु उनके साथ 2 दिन तक रहे, जितने भी दिन वो लोग वहां रहे। ये और एक दृश्य है रात के समय का सुरवेद महामंदिर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 कुंडीय महाज्ञान यज्ञ की ये जो तैयारी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक हमें कुंड ही कुंड नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञशाला को नंबर्स दिए गए थे ताकि लोगों को इसको ढूंढने में परेशानी ना हो। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सब तैयारियाँ हो चुकी है। तो स्वामी जी ने और संत प्रवर जी ने ये इतनी बारीकी से हर चीज के पर ध्यान दिया था ताकि किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और ये है जब यज्ञ चालू हुआ तब। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। ये और एक दृश्य है जहाँ पर साधकों के साथ फोटो सुरवेद महामंदिर। आप देख सकते हैं कि इसमें दुनिया भर से लोग आए थे, सिर्फ भारत से ही नहीं बट हर हर एक देश से आए थे। आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी सारे देशों से भी लोग आए थे। तो सिर्फ भारतीय ही नहीं, भारतीयों के अलावा भी काफी सारे लोग आए हैं। तो ये साबित करता है कि स्वामी जी का जो ज्ञान है वो सिर्फ भारत भर में ही नहीं बट दुनिया भर में फैल रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष की बात है। तो आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में अलग देशों से लोग आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनमें कितनी आस्था है इस ज्ञान की तरफ। ये दिव्यवाणी का समय था जब नामदेव जी की वाणी हुई थी। ये फोटो शायद अमृतवाणी के समय की है। तो आप देख सकते हैं कि नेवी के मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं, ये सारी गुरु बहनें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नेवी के मेंबर्स हैं। यूएसए, कनाडा, हर देश से लोग आए थे। आप देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी भी इसमें कितनी खुश दिख रही है, उनको इनके उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं एक तरीके का आनंद है, छलक रहा है। ये सारी गुरु बहनें सर्वेद महामंदिर के प्रांगण में। फिर से सुरवेद महामंदिर रात के समय में कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये है, तो आप सब जानते हैं कि सुरवेद महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक बैठकर साधना कर सकते हैं। तो ये एक झलक है कि आई थिंक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय था जब साधना हो रही थी। अभी मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ खुद जाकर अटेंड करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि ये सब आप सब लोग अभी जो शेयर करेंगे और ये जो फोटोज के माध्यम से हमने उस एक्सपीरियंस को लिया, तो आप सबको धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी सुंदर नक्काशी है, जमीन पर भी है और दीवारों पर भी है, और कितना विशालतम है ये कि एक ही फ्लोर पे अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, फिर भी काफी सारी जगह है और काफी लोग बैठने के लिए। अब ऊपर भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है सौरवेद महामंदिर अंदर से भी। ये सद्गुरुदेव की प्रतिमा, इसमें कितनी प्रसन्न मुद्रा में स्वामी जी दिख रहे हैं। ये है आई थिंक ये सेकंड फ्लोर से ली गई है तस्वीर। अब देख सकते हैं कि कितना सुंदर घूमट है। अब देख सकते हैं कि ये कलाकुसर इतनी सुंदर है कि आप बस अचंभित हो जाएंगे देखकर इसको। ये जो सौरवेद महामंदिर के बेसमेंट में शायद ये बनाया है। यहाँ पर स्वामी जी ने जहाँ साधना की थी उस एरिया का आई थिंक डिपिक्शन है ये। और ये जो संपन्न हुआ कार्यक्रम, इसका लोकल न्यूज़पेपर्स में और लोकल टीवी चैनल्स पे भी काफ़ी सारा इस पे इसका ये सीधा प्रसारण हुआ। काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी इस पर छपे। तो ये बहुत ही सुंदर और विशालतम और भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ऐसा ये कार्यक्रम रहा। जो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ आप आगे आकर आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। हम सब आपसे सुनना चाहेंगे कि जो हम आनंद इस उत्सव का इन फोटो के मार्फत लिया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि आपने वहां जाकर उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया। तो हम सब उत्सुक हैं आप सबसे सुनने के लिए कि किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा। मुझे आशा है कि मैं जानता हूं कि काफ़ी सारे संस्मरण भी रहेंगे, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे इस सत्संग के माध्यम से। तो ये फ्लोर अभी ओपन है, तो आप अनम्यूट करके आपका अनुभव बयान कर सकते हैं।
जय सद्गुरुदेव, गुड
जय सदगुरुदेव।
मॉर्निंग जी। आज एक यूनिक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारी वाइफ भी ज्वाइन की हुई हैं, और तो हमारे घर में जो है पहले सिर्फ एक मैं ही था विहंगम योगी, और अब जो है हमारी वाइफ भी हो गई हैं। और हमारे गांव पर भी जो है वहाँ पर हमारे घर के जितने भी व्यक्ति थे, नॉट जस्ट मेरे निजी फैमिली बट एक्सटेंडेड फैमिली में भी जो है उन सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और विजय जी, लालमणि जी थे वहाँ पर, वो भी आए थे हमारे, और विजय जी के बड़े भ्राता जो हैं बुद्धदेव जी वो भी आए थे और काफ़ी लोगों को इस ज्ञान से ये बता करके मैंने जोड़ा कि देखिए आप सब बहुत बढ़िया पूजा पाठ कर रहे हैं पर वो कखा गघा के बराबर है, अभी आपको ग्रेजुएशन करना है तो इसलिए जो है इसमें जुड़ना ज़रूरी है। और तो ये थोड़ी निजी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे ये पता नहीं जो वहाँ पर नहीं गए होंगे सर वार्षिकोत्सव में उनको प्रेरणा मिले कि ये जो ज्ञान जो है ये कितना प्रभावशाली हो सकता है विहंगम योगी और उनके फैमिलीज मेंबर्स के लिए एंड पोटेंशियली टू देयर नेबरहुड्स एंड एंड कम्युनिटी एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था और मैं थोड़ा समय देना चाहूँगा बाकी लोग जो हैं जो वहाँ पर अटेंड किए थे वे भी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें क्योंकि ये वहाँ पर 4 दिन जो हम सब लोग रहे साथ में वही वो समझ लीजिए कि एक तरह से कॉन्फ्रेंस था और फेस टू फेस सत्संग उसी को बोलते हैं सत्संगी। और वहाँ पर का जो एटमोसफियर है वो तो शब्दों से भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है और क्योंकि मैं बिल्कुल साक्षात कंट्रास्ट देख रहा था क्योंकि उसके कुछ दिनों के बाद जो है हमारी रियूनियन थी तो वहाँ भी मैं गया था और काफ़ी कंट्रास्टिंग था दोनों के कहने की एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा दोनों जगह थी पर जो अब कंपैरिजन तो करना नहीं चाहिए पर इसकी बात ही अलग है जो सत्संगियों का जो साथ है वहाँ पे साथ में बैठना खाना और संस्मरण सुनना। सबसे बड़ा चीज़ तो जो मुझे लगा कि संस्मरण सुनना जो है वो होता है जैसे आप थियोरी पढ़ रहे हैं और उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके साथ में एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उससे श्रद्धा और ज़्यादा तीव्र होती है खास करके जो नए साधक हैं उनके लिए और श्रद्धा बढ़ती है ज्ञान बढ़ता है और तो ये चीज़ था। और एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर स्वरवेद महामंदिर तो आपने बिल्कुल सही बोला कि भव्य भी है और दिव्य भी है तो भव्यता तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग देखेंगे और जो कि हर जगह न्यूज़पेपर में दिया गया है पर उसी जो दिव्यता जो है वो एक विहंगम योगी जो अच्छा बैकग्राउंड होगा जिसका उस फिलॉसफी उस साइंस के प्रति उसकी दिव्यता को वही समझ पाएगा। और बहुत बड़ी यूनिक चीज़ तो ये लगी कि उसके बेसमेंट में पहले गुरुजी की शून्य शिखर के बारे में बहुत सुंदर सा वहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट गया है किया गया है म्यूजियम तरह का और दो दो फ्लोर्स ऊपर में है आई एम नॉट श्योर थर्ड एंड फिफ्थ जहाँ पर कि ये शायद गुरु जी के निर्देश पर दो ऑडिटोरियम बनने वाले हैं और वो ऑडिटोरियम्स का पर्पस ये बताया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट जो हैं आज के हमारे जिन्हें ये ज्ञान समझ में नहीं आता है वो वहाँ पर जा करके उस चीज़ के बारे में और डीपली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये जो दूरदर्शिता जो है ये बहुत यूनिक लगी और ये स्वरवेद महामंदिर का इससे ये पता चलता है कि उसका जो है विजन तो हमें साक्षात दिख ही रहा है कि अष्ट चक्रों के ऊपर जो है इसका निर्माण किया गया है और जैसे जैसे आप लेवल प्रथम भूमि से लेके पंचम भूमि तक आप जाते हैं उस प्रकार के जो है उनमें सारे दोहे भी लगाए हुए हैं और उसी प्रकार से साधक जो है अपने आप को उस मंजिल पर जो है साधना कर सकते हैं उस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ में ये जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो प्रावधान जो उसमें डाला गया है ये तो मतलब समझ लीजिए कि साधकों को बेनिफिट दिलाने के साथ साथ में जो है जो साइंटिस्ट जो है वो भी वहाँ पे ट्रैवल कर करके और इस चीज़ को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी भी हुआ है हमारी संस्कृति में, यदि हुआ होगा तो मुझे नहीं पता है। तो ये सब देखने के बाद जो है ये सब और ये जो ये तो बहुत ही विजनरी ही हो सकते हैं जो कि ये चीज करेंगे। और एक चीज और उसमें ये भी, और वैसे तो संस्मरण काफी है, मैं और लोगों का सुनना चाहूंगा, और मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और आपसे भी सुनना चाहता हूँ। ये हमारे कुछ वो थे जो कि मैं शेयर करना था। थैंक यू।
धन्यवाद निरंजन जी, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपके परिवार से भी लोग जुड़ रहे हैं, आपके मित्र परिवार में से भी लोग जुड़ रहे हैं, और इस ज्ञान को आप इसके प्रचार प्रसार में आप एक्टिवली कार्यरत हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो आपको।
जी धन्यवाद।
जी
यस,
जय सदगुरुदेव श्रीराम जी। जय सदगुरुदेव मोनिका जी।
जी मैं कुछ अपने शब्द रखना चाहूंगी। सभी को जय सतगुरुदेव, वेरी गुड सैटरडे मॉर्निंग। मेरा नाम मोनिका एंड मैं न्यू जर्सी से ज्वाइन की हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं इस सत्संग लाइन में, उनके लिए तो आज का ये सत्संग बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल, बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे आध्यात्म जीवन में। हम बात कर रहे हैं 25,000 कुंडिया स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ की, जो संपन्न हुआ बहुत हर्षोल्लास उल्लास के साथ स्वरवेद महामंदिर धाम में, वाराणसी उमराहा जगह जहाँ मेरा दूसरी बार जाना हुआ। पिछले साल मैं गई थी वहां पे माया जी के साथ, और साल डेफिनेटली एक भी बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसकी प्रिपरेशन काफी महीनों से चल रही थी। और हम लोगों जितने भी लोग गए थे यूएसए से, उन्होंने काफी महीने पहले ही अपना तैयारी करी थी। तो इसके लिए कुछ शब्द जो मेरे मन में और एकदम दिल से भाव उमड़ रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। ये जो समारोह रहा और ये जो कुछ दिनों का जो ये प्रोग्राम था, वो हमारे जीवन में इतना मतलब इतना शांति का प्रतीक बनकर आया कि इसके बारे में वर्णन करना भी मतलब संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन जो ये यात्रा शुरू हुई और जैसे हम लोग वहां पहुंचे, और जैसे मैंने देखा कि स्वामी जी का इतना प्रेम है अपने सभी साधकों शिष्य शिष्याओं के लिए, वो बहुत अच्छे से वहां पे दिख रहा था। हमारा पूरा यूएसए के टीम के लिए एक अलग से ही आई थिंक सुकृत नगरी करके एक विलेज का मतलब निर्माण किया गया था, जिसमें हमारे 60 टेंट्स थे। ईच फैमिली हैड अ टेंट और सम फैमिलीज हैड मोर देन वन टेंट, लेकिन बहुत अच्छे से वो रहने का अकोमोडेशन का इंतजाम किया था, जिसमें सारी बेसिक नेसेसिटीज थी। और हमारी एक स्पेशल कैंटीन भी रखी गई थी, जिसमें 24 आवर्स एक्चुअली मतलब ज्यादातर सारे घंटों के लिए वहाँ पे खाना पीने का बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम किया गया था। और हम लोग सब साथ में ही थे, और सिंगापुर टीम, कनाडा टीम, ये लोग भी सब एक ही जगह पर, इनका भी प्रोग्राम और टेंट्स वहीं पे अरेंज हुए थे। मैंने जो बहुत चीज का अनुभव किया, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में गई थी इंडिया में, मैं मतलब कभी मैं सोचना सोचा नहीं था कि मैं बहुत बड़ी एक संस्थान की, मैं एक छोटी सी मतलब कह लीजिए कि मैं लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ह्यूज विहंगम योगा टीम में मैं जाऊंगी, जहां पर सब कुछ ही लग रहा था। मतलब क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं गई थी और मेरे बच्चे भी नहीं गए थे, तो मुझे थोड़ा शुरू में लग रहा था कि मैं अकेली जा रही हूँ, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि मैं वहां पर अकेली हूँ, क्योंकि सद्गुरुदेव की जो छाया है और उनकी जो कृपा दृष्टि है वो उसका एक एहसास था वो मुझे पूरे ट्रिप में रहा। जिस दिन मैंने अपनी फ्लाइट ली दिल्ली से और जब तक मैं दिल्ली वापस नहीं आई और उसके भी बाद एक 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 अजीब सी मतलब एक एक फीलिंग रही दिल में कि मैं अकेली नहीं थी। और इतना मतलब स्वामी जी तो कैसे आपके भाव पड़ते हैं कि मैंने देखा उधर प्रत्यक्ष रूप में कि आप करोड़ों की भीड़ में हैं और आप आपके जो भाव हैं वो कैसे स्वामी जी के पास पहुंचते हैं। क्योंकि ये मेरा एक्चुअली एक छोटा सा संस्मरण भी है लेकिन इट्स पार्ट ऑफ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग सब एक नगरी में थे, बहुत भीड़ थी और 17 और 18 दिसंबर को प्रोग्राम थे और मॉर्निंग से इवनिंग तक ही हम लोगों के इवेंट्स थे और इतना भीड़ में भी मतलब हम लोग सब बहुत खुश थे और सब जैसे शिवम जी ने बताया कि बच्चों के भी आप चेहरे पे देखेंगे एक अजीब अलग सा ही शांति का माहौल था। तो वो सब के बीच में मेरा बस एक ये भाव रहा था कि अब पता नहीं मतलब स्वामी जी के कब दर्शन होंगे या नहीं हो पाएंगे। और मैं उसी चिंता में थी कि इतनी भीड़ में तो अब हम मतलब इवेंट्स करने के बाद हमारा शायद पैकअप हो जाएगा और हम चले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल अनप्लान्ड वे में सारी चीजें जैसे लाइंड अप हुई और हम कुछ ही घंटों में मैं मतलब देव जी और जैसिका जी के साथ स्वामी जी के एकदम समक्ष में थी, जो कि बहुत बड़ी मतलब मुझे दिव्यता लगी कि मेरे अंदर वो ही भाव था कि मैं स्वामी जी के दर्शन के बिना वापस ना जाऊं दिल्ली। क्योंकि मुझे 18 के बाद 19 को वापस दिल्ली जाना था लेकिन मैंने एक दिन का एक्सटेंशन किया था 20th को क्योंकि मुझे 22 को एक और इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी थी। मेरे हस्बैंड को ज्वाइन करना था मुझे श्रीलंका, तो मेरे पास सिर्फ एक दिन का समय था बीच में दिल्ली में पेरेंट्स के साथ। तो मैं बस वही सोच रही थी कि इतने लोग हैं इतनी, और एक्चुअली 18 तारीख को तो मोदी जी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी वहां पे आवागमन हुआ और उनका ऐसा रहा कि पूरा दिन इंटरनेट कट ऑफ था एंड यू कैन नॉट बी इन टच विद एनीबॉडी। तो उस दिन भी कुछ फोन कॉल्स मेरे मिस हुए थे फैमिली की तरफ से और कुछ लोगों से मैं मिलना चाहती थी लेकिन जबकि मेरा पूरा दिल दिमाग और ध्यान पूरा स्वरविद महामंदिर में ही लगा था और मेरा पूरा मेरा दिल का तार जो कहते हैं वो स्वामी जी से ही जुड़ा हुआ था अपने सत्संगियों भाई बहनों के साथ और स्वरविद महामंदिर में ही मुझे रहना था। और मैं बहुत खुश थी कि मैंने 19th का दिन अपना एक्सटेंड किया था और मैं 20th को ही दिल्ली जा रही थी। तो 19 को ऐसा हुआ कि शाम के वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं स्वरवेद महामंदिर से सीधा आचार्य निवास मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच गई और मुझे जाना था एक्चुअली मसाज के लिए। वहां पे आरोग्यम का सेंटर भी लगा था और वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी आयुर्वेदिक मसाज के लिए जिसमें मेरा बहुत दिल रहता है पोटली और ओवरऑल बॉडी मसाज के लिए। बल्कि वो नहीं होके भी मैं इधर उधर ही घूम रही थी और ये नहीं पता था कि 1-2 घंटे के बाद मैं सद्गुरुदेव के समक्ष ही बैठी होंगी। तो मतलब ये मेरे को इतना ज्यादा टचिंग लगा क्योंकि वहां पे लाखों की भीड़ थी और वहां पे सद्गुरुदेव तो दिखे लेकिन वो मतलब हम लोग तो बहुत लकी थे यूएसए वालों के लिए हमारे हमारा एकदम आगे हम लोगों को बैठने का अवसर प्रदान मिला जिसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ हमारी नेवी कोर टीम को। जिनकी बदौलत, जिसमें विजय जी हैं, राज जी हैं, लालमणि जी हैं, और भी कुछ लोग जिनकी वजह से हम लोगों को एकदम समक्ष जाके स्टेज के सामने बैठने का, अमृतवाणी सुनने का मतलब अवसर मिला, जो कि एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी इतने बड़े इवेंट में। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि स्वामी जी सिर्फ कुछ ही दूरी पे हमारे सामने बैठे थे और हमने एकदम लाइव अमृतवाणी सुनी। वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट था। तो इतनी भीड़ में आपने देखा ही होगा, जिन्होंने यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, कि इतनी लोगों की भीड़ थी वहां पर, कि वहां पर पहुंचने के लिए भी चाहे मे बी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की वॉक होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपको 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए था, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहां पर। और वहां पर निकलने के लिए भी आपको पहले से ही निकलना पड़ेगा या थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही था, क्योंकि इट इज इन द कोर ऑफ विलेज, इट्स अ बिग विलेज, और वहां पे सारे साधारण लोग ही ज्यादा ज्यादा भरपूर भीड़ में थे। तो वहां तक पहुंचना और वहां से निकलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो उस वक्त तो मेरा यही था कि हम लोग इवेंट में आ गए हैं, लेकिन अब हम कैसे जाएंगे, और स्वामी जी तो बस अब बिल्कुल डिसअपियर ही हो जाएंगे, और कल तो सब पैकअप करके वापस जाएंगे, और बिल्कुल भी संभावना नहीं है शायद दर्शन की। लेकिन स्वामी जी के देखिए दर्शन भी हुए, और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, स्वामी जी ने बहुत प्रेम से मतलब दर्शन दिए, और मुझे इतना उनका आशीर्वाद था कि मुझे उनके हाथों से प्रसाद मिला, और वो भी डबल प्रसाद मिला, जो मुझे लगा कि शायद मेरी फैमिली के लिए है, क्योंकि मैं अकेली आई थी और स्वामी जी ने 2 डब्बे मतलब हम मेरे हाथ में रखे, और मेरे साथ देव जी और जैसिका जी भी थे, जिनको स्वामी जी ने पर्सनली बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दी उनके प्रचार के लिए, आगे के लिए, जिसके लिए मैं भी बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रही थी कि मैं स्वामी जी के समक्ष थी, और देव जी और जैसिका जी को वो कैसे उन्होंने सेवा के लिए प्रोत्साहित किया, और मैं उसको पूरा अपने कॉन्शियस माइंड और हार्ट से देख रही थी, सुन रही थी, और बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी ने स्वरवेद का कुछ दोहा भी बोला, जिसमें स्वामी जी ने बोला कि क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल है, लेकिन देव जी जैसिका जी जैसे साधक शायद कभी ही हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहली बात तो वो अमेरिकन हैं, वो सब हम सब जानते हैं, और दूसरी बात ये कि वो लोगों को अभी इंडियन कल्चर और एक्चुअल डीप में जो हमारा रिस्पेक्ट होता है वो, और उसमें अपने मतलब अपने आप को कितना सहज रूप से सद्गुरु के सामने रखे, और मतलब मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे जब देव जी ने मतलब उन्होंने देखा कि हमारे जाने के पहले मैं थोड़ा सा सेवा राशि निकाल रही थी पर्स में से, और मेरे तो हाथ थोड़े वाइब्रेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सद्गुरुदेव के सामने जा रही हूँ। तो मेरे हाथ में जो भी सेवा राशि आई, मैंने बस उनको ये बोला कि हमको जाना है और खाली हाथ तो नहीं जाना है, तो मेरे इतनी सेवा राशि आई है, और मैं हम तीनों के बिहाफ पे ये सद्गुरुदेव के चरणों में रखने वाली हूँ। और वो लोग भी थोड़े ऐसी ट्रांस स्टेट में थे, उनको भी कुछ समझ नहीं, मतलब उनको भी समझ नहीं आया, और मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम डॉलर्स में स्वामी जी को राशि दे तो हमें कितना देना चाहिए। तो मैं उनको बोली कि देखिए ये सब तो नहीं इतना मैटर करता, आपके भाव होने चाहिए, और मैं यही बात कर रही थी कि जब जब हमें अंदर से बुलाने को आया कि आपको स्वामी जी याद बुला रहे हैं, तो उतनी ही बात हुई। और फिर जब हम अंदर गए और स्वामी जी के साथ हम बैठे काफी, आई थिंक अराउंड टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन काफी अच्छा टाइम था वो, और जब देव जी का बारी आई, और एक्चुअली ये लोग तो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो मेरा ट्रांसलेशन रहा पहले, जाने से पहले मैं सेवक को समझा रही थी कि हम वहां पे क्यों आए हैं, एक्चुअली स्वामी जी को वहां से निकलना था, क्योंकि उनकी यूएस से मीटिंग हुई थी कुछ ओवरसीज ग्रुप के साथ, और सदगुरुदेव को निकलना था और उसी वक्त हम वहां पहुंचे थे, और बाहर बहुत भीड़ थी और बहुत सेवक खड़े थे और सब लोग खड़े थे, क्योंकि स्वामी जी जब निकलते हैं तो कोई भी आचार्य परिवार में या उस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो स्वामी जी के दर्शन ना करना चाहे, तो सब लोग बाहर खड़े थे और ऊपर भी खड़े थे, और हम लोग ऐसे गए और हमारी स्थिति भी ऐसी थी कि हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि अगर हम आज नहीं देखेंगे स्वामी जी को तो पता नहीं देखेंगे, तो मतलब कब दर्शन मिलेंगे। तो हम लोगों को ऊपर बुलाया गया, और फिर जब हमारा टर्न मतलब हम लोग स्वामी जी के साथ, और उन्होंने हमसे देखा, हमसे बात किया, हमसे कुछ पूछे, और जब देव जी से उन्होंने एक्चुअली वहां पे ट्रांसलेशन के लिए भी कोई खड़े थे, क्योंकि देव जी और जैसिका जी इंग्लिश में ही बोले और फिर उसकी ट्रांसलेशन करके स्वामी जी को बताए, और स्वामी जी जो बोले उनको वो भी ट्रांसलेट होके उनके उनके पास आए। तो जब देव जी को कुछ बोले, एक्चुअली देव जी इतने ही मतलब मैं क्या बोलूँ, उनकी स्थिति ऐसे थी कि वो अपने एक्चुअली उनको मेरी बात याद आ रही होगी, शायद मैं उनको बोल रही थी बाहर कि हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे है हम ऐसे चलेंगे। और उन्होंने मतलब देखा, उन्होंने मुझसे पूछा एक्चुअली बाहर, जो आधी बात ही रही, उन्होंने मुझे बोला कि उनके उनके पास एक लॉकेट है जो उनके लिए बहुत प्रेशियस है, जो वो हमेशा गले में डाल के रखते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं ये दे देता हूँ स्वामी जी सदगुरुदेव के चरणों में। तो मैंने उनको बस इतना ही बोला कि एक्चुअली ये सबसे नहीं होता, मतलब भाव ही होता है, आप दे सकते हैं लेकिन सदगुरुदेव मतलब इस लॉकेट का क्या करेंगे, ऐसे मेरे भाव आया उस वक्त। लेकिन मैं उनको बहुत प्रेम से ही बोली कि आपको जैसे दिल करता है आप करिए, लेकिन स्वामी जी तो कुछ भी नहीं लेते हैं। लेकिन अंदर जाके जब वो मोमेंट आया तो देव जी ने अपना लॉकेट एक्चुअली उतारा और सदगुरुदेव के सामने ऐसे दोनों हाथों पे रखकर उनको मतलब उनके चरणों में वो देना चाहिए। तो स्वामी जी बोले कि ये क्या है, तो वो ट्रांसलेट हुआ, और फिर देव जी बोले दिस इज ऑल आई हैव, मतलब मेरे पास इससे बड़ा कुछ और है नहीं आपके चरणों में देने के लिए। और मैं जब वो सुनी उनके शब्द, तो मतलब अंदर से मेरे ऐसे मेरे को हुआ कि देखिए, एक साधक जो अमेरिका बेस्ड हैं और जिनको मतलब विहंगम योग की जर्नी में कुछ ही साल हुए हैं, और उनके भाव देखिए कि वो स्वामी जी के सामने अपना सब कुछ मतलब जो उनके लिए सबसे प्रेशियस चीज है उनको देने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाए, और उनकी आंखों में आंसू थे, और मैं भी वो दृश्य भूल नहीं पाई कि मतलब स्वामी जी के प्रति कितना प्रेम है उनके लिए। उनको तो स्वामी जी के साथ ही संत प्रवर विज्ञानदेव जी महाराज थे, और विज्ञानदेव जी महाराज बोले कि स्वामी जी बोले ये क्या है, तो विज्ञानदेव जी महाराज बोले जी ये मैंने बोला ये इनका लॉकेट है, ये पहन के रखते हैं। तो विज्ञानदेव जी महाराज बोले ठीक है, स्वामी जी को बोले आप लीजिए और इसको अपने स्पर्श करके और इनको वापस दे दीजिए। तो स्वामी जी ने बड़े ही प्रेम से वो लॉकेट अपने हाथ में लिया और उसको बहुत प्रेम से मतलब स्वामी जी ने पकड़ के रखा और उसको ब्लेस करके आई थिंक स्वामी जी ने देव जी को दिया और देव जी ने वापस पहन लिया। तो इसमें मेरे को ये लगा कि अब तो देव जी के ऊपर इतनी ब्लेसिंग है स्वामी जी की। और फिर स्वामी जी बोले कि उनकी ये बात सुन के जब उन्होंने बोला मेरे पास और कुछ देने के लिए है नहीं, मेरे पास सिर्फ ये लॉकेट ही है, तो स्वामी जी उस बात पे बोले कि सदगुरु विहंगम योग की जर्नी में सदगुरुदेव के मतलब आप उसमें हैं, छाया में हैं, इसमें चारों फलों की आपको प्राप्ति होती है, और धन काम मोक्ष और अर्थ काम धर्म मोक्ष ये सब आपको मिलता है। और स्वामी जी उसको रिपीट किए, दो तीन बार रिपीट किए, और वो ट्रांसलेशन में भी उन्होंने मतलब जो ट्रांसलेट के लिए खड़ा था उन्होंने भी वो रिपीट किया देव जी को एक एश्योरिटी देने के लिए कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आप जिस मार्ग में हैं उसमें आपको ऑटोमेटिकली चारों चारों फलों की प्राप्ति होती है और होगी। जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब स्वामी जी के, हम तो सत्संग में सुनते ही आए हैं, हमेशा हम सुनते आए हैं हमारे गुरु भाइयों से, बहनों से, कि ऐसा होता है। लेकिन जब स्वामी जी के, मैं उससे शब्दों, मतलब उनकी वाणी से जब मैं सुनी, तो एक बहुत अलग सा ही एक मुझे, मतलब एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं शेयर मतलब कर नहीं पाऊंगी। और फिर जब जैसिका जी की बारी आई, तो जैसिका जी भी बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से, और बहुत शांति पूर्वक स्वामी जी के सामने अपने दोनों हाथ रखी और बोली कि आई लव यू स्वामी जी, मतलब आई लव यू सदगुरुदेव। तो मैं जब वो भी सुनी, तो मैं भी बहुत ज्यादा उस भाव में चली गई। तो एक्चुअली मेरे मुंह से भी निकला कि वी ऑल लव यू स्वामी जी सदगुरुदेव मोर देन एनीथिंग एल्स इन 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 द वर्ल्ड। तो स्वामी जी वो सुन के, मतलब इतना प्रसन्न, इतना अच्छे से प्रसन्न हुए, हमको देखे, और हमें, मतलब उन्होंने 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 मस्तिष्क ऐसे हिलाया कि जैसे वो एग्रीमेंट में है कि हम जो बोल रही है ही एग्रीज टू दैट। तो ये मेरा एक संस्मरण था जिसमें मैं बताना चाहती थी कि स्वामी जी के मिलना और दर्शन करने की जो मेरे अंदर ख्वाहिश थी, वो बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आसानी से, मतलब वो हो गई, जिसके लिए मैं स्वामी जी की बहुत बड़ी, मतलब उनके लिए शब्द नहीं है, मैं बहुत उनको सहराती हूँ इस चीज के लिए, और उनके लिए बहुत मेरे अंदर प्रेम है। आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं ऐसे गुरु की शिष्य हूँ जो अपने हर शिष्य और शिष्या के भाव को पढ़ सकते हैं, और चाहे आप उनके सामने हो चाहे नहीं, वो इतनी उनमें इतनी समर्थता है और इतनी शक्ति है कि वो आपको समझ सकते हैं, और आपको और क्या मैं बोलूं, सॉरी। तो ये मेरा एक संस्मरण था, बट इसके अलावा ओवरऑल वार्षिकोत्सव डेफिनेटली एक आत्मा की शांति का प्रतीक है। आपकी जो आत्मा, आत्मा में सबसे जो चीज की कमी है वो है एक अटूट शांति, जो कि मुझे मुझे मिली, जो मुझे महसूस हुई, और जो जो अब भी मेरे साथ है, वो है कि सद्गुरुदेव का इतना बड़ा जो इवेंट हम लोगों ने अटेंड किया, उसके बदौलत हमें जो एक बहुत अच्छी एक इटर्नल पीस और शांति की प्राप्ति हुई, जो जो आपको एक डिफरेंट ही जोन में ले जाती है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और मैं यही कहूंगी कि जो लोग नहीं जा पाए इस इवेंट के लिए, वो डेफिनेटली ट्राई करें, क्योंकि हर साल वार्षिकोत्सव होता है इंडिया में, और आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी डेट्स पूछ सकते हैं आश्रम से। एंड आई डेफिनेटली इनकरेज ईच वन ऑफ यू कि आप डेफिनेटली अगले 1-2 सालों में वार्षिकोत्सव अटेंड करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ प्लान कीजिए। और वाराणसी बहुत ही सुंदर शहर है, वहाँ पे गंगा गंगा भी है, और बहुत सारे होटल्स हैं, और जब आश्रम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही, अगर आप पहले बता के जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपका सारा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल सकता है। तो यही मेरा प्रस्ताव है कि इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी कि मैं अब नेक्स्ट वार्षिकोत्सव कब अटेंड करूं। तो आप लोगों को मेरी अगर वाणी से कुछ भी प्रभाव पड़ा है, तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा दीजिए प्लीज, और ऐसा मौका दोबारा आए और हम लोग दोबारा वार्षिकोत्सव में जाएं, सद्गुरुदेव के इतने बड़े पर्व में हम लोग सम्मिलित हों, इससे बढ़कर और हमको जीवन में क्या चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी श्रीरंग जी, और जय सद्गुरुदेव।
धन्यवाद मोनिका जी, बहुत ही भावपूर्ण आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। सच में आप जब बोल रही थी तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। स्पेशली जब आपने देव जी का संस्मरण बताया तो वो बहुत ही अद्भुत था। और हम देखते ही आए हैं कि देव जी, जेसिका जी, इनका जो समर्पण है सदगुरु के प्रति वो सराहनीय है। हम सब उनसे कुछ सीख पाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं उनसे सीखूं, कि उनका जितना समर्पण है, जितना सेवा भाव है, वो तो उससे बहुत कुछ सीखना है हमें। गीत जी, आपका आई थिंक ये फर्स्ट टाइम था इवेंट इंडिया में अटेंड करना। आप आई थिंक फर्स्ट टाइम वार्षिक उत्सव आपने किया था, तो क्या आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी?
जय सतगुरुदेव सभी को और हैप्पी न्यू ईयर। मेरा एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस के से। मैं वार्षिक उत्सव के लिए सिर्फ 2 दिन और एक नाइट थी वहां पर। 17 मैं 17 को मॉर्निंग में पहुंची थी और मुझे 18 को नाइट में निकलना था। मेरी मॉम ने मुझे अकॉम्पनी किया था, वो इनिशिएट नहीं हुई है, वो विहंगम योग से अभी नई जुड़ी हुई है। बट नेवरदलेस उन्होंने बहुत इंजॉय किया उस पूरे वातावरण को। तो जब हम पहुंचे तो वहां पर, जैसे मोनिका जी ने डिस्क्राइब किया कि वहां पर टेंट्स लगे थे और वो टेंट्स एक एक ऐसा कॉलोनी बना के रखा हुआ था कि हम सब लोग वहाँ पे जो भी ओवरसीज से आए थे सब लोग से मिल रहे थे। बिफोर दैट मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी दिल्ली से बनारस के लिए, उसमें मुझे एक फैमिली दिख फैमिली मिले जो भी वार्षिक उत्सव अटेंड कर रहे थे। और उसमें एक अंकल जी थे, वो 40 इयर्स से, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो 40 इयर्स से विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। और उनकी फैमिली के साथ भी मेरा बहुत अच्छा सत्संग। उनपे भी मुझे एक फैमिली मिले जो हमारे साथ ही सेम जगह पर पहुंचे, सेम टेंट्स में पहुंचे। उसके बाद जब हमने वहाँ पे जो टेंट्स वगैरह में अपना सामान वगैरह रखा, तो हम लोग सबसे मिले। और एक छोटा सा चीज था कि वहाँ पे मेन गेट पर एक सेवक दल था जो कि सिक्योरिटी के लिए था। और वो सिक्योरिटी से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया है और वो 10 दिन पहले से ही यहाँ पर दूसरे टेंट्स में रह रहे हैं। तो इट मेरे को सुन के ऐसा लगा कि हमको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है जिस जिस के मतलब मैं लायक नहीं हूँ। तो वो लोग अपना सेवा उस तरीके से दे रहे थे कि ट्रेनिंग करके आए हैं, और वो सारे लेडीज थे। और वो लेडीज उन्होंने बोला कि स्वामी जी का प्लान है कि हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाएगी कि हम पूरे देश भर में एज अ रक्षक दल, लेडीज रक्षक दल बनकर प्रचार और प्रसार करेंगे और हम अपनी सेवा देंगे। तो वो एक बहुत मुझे अच्छी चीज लगी वहां पर। दूसरा, जिस टेंट एरिया में हम रात को जब सारी लाइट्स वाले ओवरसीज का जैसे जैसे आए और जैसे हम बार उसमें बहुत हैप्पी थी और वो बहुत एनकरेज कर रहे थे। और एक और चीज वहाँ पे बहुत अच्छी सुनने को मिली, मेरे को पहले नहीं पता था। सदाफल देव फाउंडेशन, जो जिसमें लेडीज बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको हेल्प उनको एक मीडियम दिया गया है जिससे कि वो अपना जो भी उनके अंदर कला है या जो भी उनके अंदर स्किल्स है वो निखर के आए और वो लोग को हेल्प करे। तो उसमें जो उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने जैसे बनारसी साड़ी उन्होंने हाथ से वो वीविंग किया है, जूट के बैग्स वो हाथ से वीव किया है, एंड वो देखते ही बनता था कि इतना ब्यूटीफुल तरीके से उन लोग ने काम किया था। और ये सदाफल देव फाउंडेशन भी नामदेव सरकार के देख रेख में चल रहा है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक एक चीज ऐसी थी कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी हो रहा है। यहाँ पे बैठ के हमें मुझे लगता था कि ओ मेरे को बहुत कुछ पता है, लेकिन जीरो माइनस में लग रहा है मुझे कि मेरे को कुछ नहीं पता था। आई विश कि मैं वहाँ पर पूरे 4-5 दिन रह सकती सारे गुरु भाई गुरु बहन के साथ, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस था इन 2 दिनों में वो भी बहुत बहुत अच्छा था। तो शाम को दिव्यवाणी हुई, दिव्यवाणी के लिए जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी वहाँ पे, लोग अपने कुछ कुछ लोग बैग लेकर आए थे और रात को वहीं स्पेंड किया उन्होंने जहाँ पर दिव्यवाणी हो रही थी। और इतने नंबर ऑफ पीपल को देख के ऐसा लगा कि कितने कितने लोग कहाँ कहाँ से, कितनी कितनी दूर से, कितने कितने कष्टों को झेल के आ रहे हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और जब दिव्यवाणी हुई तो हम लोग को जैसे मोनिका जी ने बोला कि आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, और दिव्य संक्रमण जी जी हम अपने शिविर में वापस आए, तो फिर वहीं गुरु भाई और गुरु बहन के साथ बट ओवरऑल मैं बोलूँगी बहुत 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 ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा इस
जय श्री गुरुदेव श्रीरंग जी।
जय श्री
अगर
गुरु जी।
मैं मतलब थोड़ा सा कुछ ऐड जरूर करना चाहूंगा, जितना भी डेफिनेटली अभी आप लोगों ने सब सुना है, बस सब मतलब इतना हार्ट टचिंग है कि क्या बोला जाए। मेरा भी कुछ ऐसे तो हर बार कुछ ना कुछ नया या अद्भुत देखने को मिलता ही है। इस बार भी काफी मेरा अनुभव अपना बहुत अद्भुत ही रहा। इनफैक्ट कि एक समय मुझे लगा था कि शायद मुझे स्वामी जी के दर्शन मिलेंगे ही नहीं और मुझे ऐसे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, जबकि हमने हमारे पास टाइम यहाँ से हम ले करके गए थे 16 को पहुंच करके 17, 18, 19, 20 की इवनिंग को हमें चलना था। और सर्वप्रथम तो खैर प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मुझे लगता है 65 से ऊपर टेंट लगे थे हम लोगों के लिए और हर एक टेंट में कम से कम 4-5 लोग तो थे ही, और इसके अलावा शायद 400 या कुछ तो या और भी ज्यादा होटल्स बुक हुए थे। तो वहां पे भी बाहर में बहुत सारे जो विदेश से आए थे वो लोग थे, बहुत और भी लोग जो होटल में रुके थे। और कुछ पिक्चर्स मैंने देखी इसमें उसमें मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ क्राउड अभी जो भी पिक्चर हमने देखी उसमें बहुत कम दिखाई दिया है। जो एक आपने देखा कि यूएस के लोग बैठे हैं और पीछे बाकी पीछे बहुत दूर तक लोग बैठे हुए दिख रहे थे कुछ फोटो में, तो एक्चुअली दैट वाज ओनली 1/4। वो जो पूरा एक शेड जो बना था, इट वाज ओनली लाइक 1 शेड वाज 1/4 ऑफ क्राउड, क्योंकि वहां पे 3 वैसे शेड थे और उसके अलावा इक्विवेलेंट ऑफ क्राउड आपका बाहर में था। कुछ लोग भोजन के लिए जा रहे थे, कई बहुत लोग रेस्ट रूम जाना था, फिर पीछे में कई तरह की हमारी स्टॉल्स लगती हैं हर बार प्रोग्राम में। सर जो जो लोग गए होंगे उनको उन्होंने देखा होगा, जो अगर नहीं अभी भी गए तो जैसे आश्रम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदिक के हैं या बुक्स की बहुत बड़ी स्टॉल लगती है, फिर डॉक्टर वहाँ थे चिकित्सा करने के लिए। उसके बाद वहाँ पर सेवा केंद्र था जहाँ पर लोग सूर्य महामंदिर के लिए डोनेशन भी कर रहे थे। वहाँ पर एक सेंटर था जहाँ पे सुकृत आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, कैलेंडर मिल रहा था, बहुत सारे लॉकेट्स या और भी चीजें मिल रही थी, बुक्स मिल रही थी। एक काउंटर ये भी लगा था जहाँ पर हैंडमेड चीजें भी रखी गई थी, जो कि मतलब मोनिका जी की जी सब ने शेयर किया। तो ये सारा पूरा एक बहुत बड़े एरिया का मतलब वो काउंटर लगा हुआ था, और हवन यज्ञ की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से थी। कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे आश्रम को, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले भी हुआ था, क्योंकि पीएम आ रहे थे, तो फॉर सिक्योरिटी रीजन कहीं पर भी लकड़ी या मैचस्टिक कपूर ये सब नहीं दिया गया था बहुत जगह पर। और उसके बाद में जब उनके जाने के बाद सब चीजों को लाया गया, तो इट टुक अ लिटिल टाइम, बट इवेंचुअली सब लोग बहुत अच्छे से रहे। और प्रोग्राम 1718 का तो मतलब आई डोंट हैव एक्चुअली वर्ड्स, वो इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था। कब हम लोग स्वामी जी के सामने बैठ करके दर्शन कर रहे हैं, स्वामी जी के पास मतलब स्टेज पर भी जाने को हम सबको मौका मिला। और उसके बाद में जब हवन हो गया था, तो उसके इमीडिएट बाद मेरा जो छोटा बेटा है उसको पेट में दर्द शुरू हो गया था। एक्चुअली उसकी स्थिति यहाँ यूएस से चले थे, थोड़ी तभी थोड़ा सा गड़बड़ थी, क्योंकि समबड़ी लाइक उसको थोड़ा इन्फेक्शन कुछ बैक्टीरियल हो गया था चलने से पहले ही स्कूल से। तो बट इट वाज लाइक ऑन द जर्नी चल रहा था हम लोग भी तो, लेकिन प्रोग्राम के बाद ही वो थोड़ा सा उसको थोड़ा ज्यादा होने लगा, तो समहाउ वी हैड टू टेक हिम टू, हम लोग जो स्टॉल था जहाँ पर चिकित्सक वगैरह बैठे थे, हम लोग किसी तरह वहाँ पे पहुंचे उसको लेके। तो उन्होंने कहा कि हाँ इसको तो मतलब काफी तेज लगता है, सर्दी है, हो सकता है कि इसको निमोनिया भी हो, मतलब उन्होंने कुछ हिंट दिया। तो फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी वहां से, हम काउंटर से लेके फिर उसको टेंट में ले जा करके रेस्ट कराने लगे। तो फर्स्ट डे उस दिन प्रोग्राम का था, तो 18th को प्रोग्राम की नाइट वैसे ही चला। फिर रात में सोने के बाद 19th को उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो हमें लगा कि बेटर है कि हम इसे कहीं हॉस्पिटल या डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएं। तो फिर वहां से हम लोग उसको लेकर के गए एक हॉस्पिटल में, एंड लाइक देयर दे टोल्ड यस टेस्ट के बाद कि इसको निमोनिया है, शायद थोड़ा सा पैच है, तो इसको हम यहीं अभी रखेंगे जब तक ये ठीक नहीं होता। तो हम लोग 19 से हॉस्पिटल में ही थे, और मतलब 19 को तो उसकी हालत खराब थी। तो उसके बाद में समहाउ नेक्स्ट डे उसकी स्थिति काफी सुधर गई थी, मतलब उसको कोई पेन वेन नहीं हो रहा था, और उसकी कॉफिंग भी कम हो गई थी। एंड लेकिन 19 को तो ऐसा लगा था कि हम लोग शायद पता नहीं स्वामी जी के दर्शन भी हो पाएंगे कि नहीं, या यहाँ से हम लोग निकलने में भी दिक्कत होगी। तो 20th को डॉक्टरों ने फिर भी कहा कि उसकी दवाई का जो डोज है लेते लेते आफ्टरनून के बाद ही डिस्चार्ज होगा, और हमारी टिकट थी 20th को इवनिंग में, हमें निकलना था आश्रम से 6 बजे करीब तक निकल लेना था, और ये हम लोग थे 12 बजे हॉस्पिटल में। उसके बाद और हॉस्पिटल काफी दूर था वहां से, मतलब हॉस्पिटल जो था वो अराउंड आई थिंक 15-20 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग उसके बाद में वहां पे वेट किए, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटर होगा एक बार सीटी स्कैन भी करा ले। तो मतलब ओवरऑल लाइक टाइम लगते जा रहा था। और यहाँ पर आश्रम में भी एक बड़ी अद्भुत घटना हो रही थी। मेरे पेरेंट्स एक्चुअली आश्रम में थे और मेरा बड़ा बेटा भी वहीं था, तो वो लोग स्वामी जी का दर्शन जब 20th को सुबह से हो रहा था, तो दे वर वेटिंग कि उनको दो भी दर्शन मिल जाएगा। लेकिन इवन आफ्टर वेटिंग फॉर 2 आवर्स स्वामी जी का उनको दर्शन नहीं हुआ। और हम लोग इधर हॉस्पिटल में आफ्टरनून सीटी स्कैन वगैरह होते होते हम लोग को 2:30 वहां बज गई थी। तो फिर वहां से हम लोग गाड़ी लेके किसी तरह भी चल के आए आश्रम के तरफ, तो हमें और 1.5 घंटा लग गया क्योंकि ट्रैफिक और ये सब पे था। तो जब आश्रम में करीब पहुंचे तो हमें फिर पता चला कि स्वामी जी मतलब पापा से कम्युनिकेशन में थे, तो स्वामी पापा बोले थे दोपहर में कि नहीं स्वामी जी का दर्शन तो नहीं हुआ, अब इवनिंग में ही होगा 4 बजे के बाद। तो हमें थोड़ा सा लगा शायद मिल जाए हमें दर्शन, फिर भी जब रास्ते में थे आ रहे थे तो काफी ट्रैफिक और जाम में लगा कि शायद अभी होगा नहीं। तो हम लोग यही सोचे कि चाहे जैसे भी है वो आश्रम पहुंच के नहाएंगे भी नहीं, सीधे चले जाएंगे स्वामी जी के दर्शन के लिए अगर मिला तो। करते करते हम लोग को पता चला कि शाम को जब करीबन 15-20 मिनट था पहुंचने का, तो फिर पापा से बात हुई, बोले कि नहीं स्वामी जी का दर्शन हो रहा है और वो लोग भी वहां सूरज महामंदिर से बस बगल में संत निवास है वहां पर है, तो हम लोग को वहीं डायरेक्टली आने का बात हुई। तो हम लोग वहां सीधे सीधे पहुंचते पहुंचते अल्टीमेटली जब पहुंचे तो द मोमेंट वी रीच्ड टू द फ्लोर जहां पर दर्शन हो रहा है, उसी के बाद मतलब समझिए कि हमारा नंबर था। तो कहने का मतलब कि चाहे हम लोग के शायद कर्म से जैसे भी इतना हम लोग तकलीफ में या मतलब थे, मतलब वी हैड वी वेर लाइक कहना ही चाहूंगा कि हमारे कर्म के अनुसार हम बहुत डिविएशन हमें था, लेकिन सदगुरु हर जगह हम लोग को मतलब रक्षा कर रहे हैं। एक अनजान जगह पे हम लोग किसी हॉस्पिटल में हैं, वहां से हम कैसे आएंगे गाड़ी वगैरह लेके, इट्स टोटली लाइक काइंड ऑफ अननोन, मतलब विदेश या यूएस में रहते रहते इट्स अन अननोन। बट उसके बाद भी सब मतलब जो जो हमें मिलते गए रास्ते में उन सब ने अपना इतना मतलब कोशिश करके अपने आप से क्विकली हमें पहुंचाते रहे। और लाइक फिर और इतना भी देखिए कि स्वामी जी ने हमारी अव्यवस्थता में मतलब हमारे जो संस्कारों का पजल है उसमें भी स्वामी जी ने कितनी सहजता से उस अपने आप का स्केड्यूल इस रूप से चेंज कर दिया या बना दिया कि जब हम पहुंचे तभी हमें दर्शन मिला। मतलब उससे पहले पेरेंट्स थे, सब कुछ थे, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पाया, उनको भी साथ में इवनिंग में ही दर्शन हुआ। तो मतलब ये है कि सदगुरु मतलब हमारे संस्कारों को और हमारे जो हमें जो भी हमारे भोग हैं उनको कटाते हुए कैसे निकालते हैं और कैसे मतलब उसमें भी मतलब उस कहा जाता है, मतलब सर्वेद का दोहा आता है कि दुख सागर संसार में सदगुरु एक आसार, मतलब उस सारे चीजों में भी सदगुरु अपने आप को इस तरह से सम्मिलित करके निकाल लेते हैं हमें, जिसका कि मतलब उनको अगर कोटि कोटि नमन भी किया जाए तो लाइक मतलब सही में कहा जाए तो बहुत कम है। मतलब जिस रूप से सदगुरुदेव ने हमें उन सब चीजों से निकालते हुए और मतलब समय से जैसे ही हम पहुंचे हमें दर्शन हुआ, स्वामी जी ने उसके बाद हमें भी प्रसाद दिया और फिर हम लोग वहां से वापस आ गए क्योंकि समय ज्यादा नहीं था। तो लेकिन मतलब उसमें भी स्वामी जी के दर्शन हमें मिल गए और उसके बाद हम लोग वहां से निकल के ट्रेन स्टेशन पहुंच के ट्रेन से अपने आगे की जर्नी तय किए। पर यही है कि सदगुरु हमारे कर्मों के अंदर कैसे रूप से कार्य करते हैं इस चीज का ज्ञान हमें अगर मतलब स्वामी जी देखो कितने क्या कहें कि बहुत बारीक रूप से मतलब कहिए कि बहुत बारीक रूप से सपना कार्य करते हैं जिसको हम शायद समझ नहीं पाते हैं बहुत जगह। तो यही कहूंगा कि सदगुरु जो चेतन सत्ता है वह बड़ी अद्भुत है और वह कभी दर्शाती नहीं है कि कैसे वह कार्य कर रही है, इसको हम सबके लिए समझ पाना बहुत ही कठिन है। मतलब इस तरह से कई बार कई ऐसे सिचुएशंस मुझे भी मतलब सदगुरु दया से देखने को मिला है। यही समझ में आता है कि किस रूप से जिस रूप से सदगुरु कार्य करता है हम सब के समझ के हम सब की कल्पना के परे है, वो कहाँ से कार्य कर लेता है। तो यही कहूंगा और सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ सबसे ही प्रार्थना करूंगा कि जब भी मौका लगे जरूर से जाइए सर्वेद महामंदिर धाम, बहुत ही अद्भुत अद्भुत अनुभव मिलेगा, वह भूमि ही एकदम अद्भुत है। जय सद्गुरुदेव।
धन्यवाद राज जी। बहुत ही टचिंग संस्मरण आपने सुनाया, और इससे ये साबित होता है कि सद्गुरुदेव कैसे हम अपने शिष्यों पर ध्यान रखते हैं, कैसे उन पर कृपा दृष्टि हमेशा रखे रहते हैं। तो ये संस्मरण ही है जो हमारा भाव दृढ़ करता है, और इससे साबित होता है कि शिष्य को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए सद्गुरु कैसे हमेशा कार्यरत रहते हैं, कैसे उनकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा रहती है। तो अभी समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बट मैं चाहूंगा कि अगर कोई किसी की इच्छा हो कि कुछ 5 मिनट में और कुछ शेयर करना चाहता है तो वो आगे आके शेयर कर सकता है।
जय सतगुरुदेव सभी को। मैं एक बहुत छोटा सा संस्मरण इस पूरे एपिसोड से ड्रॉ किया है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी। मैंने 30 इयर्स के बाद इस बार वार्षिक उत्सव अटेंड किया, तो इट वाज बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए ये पूरा फीलिंग। और मैं अपने 7 साल के बेटे के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे बहुत सारे एप्रिहेंशंस थे कि वहाँ पे इतनी भीड़ होगी। हमने उसको एयर टैग पहना के रखा था, बहुत सारा कुछ था, बट व्यवस्था के स्टैंड पॉइंट से सारा कुछ बहुत ही अच्छे से था। हम सबके पास एक आईडी कार्ड था। गार्ड्स जो थे सिक्योरिटी में, जितनी भी लेडीज थे, कुछ जेंट्स भी थे, वो बहुत मेटिकुलसली सारे चीज़ों को चेक कर रहे थे। तो वो तो इट वॉज वेल टेकन केयर ऑफ, तो वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक छोटा सा संस्मरण जो मैं शेयर करना चाहूँगी, बहुत भीड़ थी हवन वाले दिन जब हम लोग वापस आ रहे थे। तो उस क्राउड में ऐसा लगा कि शायद दोबारा से जाकर के अमृतवाणी सुनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट शाम को हम लोगों ने एक अटेम्प्ट लिया, सारे लोग साथ में निकले यूएस टीम, और थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आए। बट somehow मुझे अंदर से वो ठीक नहीं लग रहा था कि वहां पे होते हुए भी मुझे YouTube पे ही देखना पड़े अगर अमृतवाणी। तो अंदर से मैंने फिर प्रार्थना की सदगुरुदेव से कि स्वामी जी किसी तरीके से हम लोगों को वहां पे ले जाएं कि हम अमृतवाणी। वैसे तो सदगुरु सत्ता हर जगह है, बट एक जिस जड़ लेवल पे हम लोग हैं, एक लगता है कि स्वामी जी को लाइव देखा और वो अमृतवाणी सुनी हमने। तो हम लोग वहाँ पे जब पहुंचे तो मैंने फिर एक अटेम्प्ट लिया और समहाउ बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। तो बहुत अच्छे से हम लोग उस एरिया में पहुंच पाए। बट जिस एरिया में हम लोगों को बिठाया गया था वो एरिया पे हम प्रोजेक्टर से स्वामी जी को देख सकते थे। और तभी फिर मैंने प्रार्थना किया कि अब यहाँ तक पहुंच गए स्वामी जी, अब आगे क्या। और अचानक से हमें दिखता है कि विजय भैया भी पीछे से आ रहे हैं, डेव जैसिका मोनिका जी सबके साथ में। तो हम लोगों को एंट्री मिल गई वापस से उस एरिया में बैठने की, जो कि स्टेज से काफी पास में था। और रियांश मेरा 7 साल का बेटा, वो सो गया था उस वक्त जब अमृतवाणी हो रही थी। और अचानक से हम लोगों को स्टेज पे दर्शन के लिए बुलाया गया, तो मैंने रियांश को सोता हुआ छोड़ दिया और मैं चली गई दर्शन के लिए। और उस वक्त सिंगापुर टीम से सुभाष जी हैं, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ है रियांश, तो मैंने कहा वो सो गया। तो मुझे मन में बड़े जोर से एक खटक हुई कि अरे, मैंने इतना अच्छा मौका था, उसको दर्शन करवा देना चाहिए था। तो मैं दर्शन करके वापस आई, फिर मैंने इसको उठाया और ये उठा तो इसको बहुत जोर से कान में दर्द होना शुरू हुआ। इसने बोला मेरे कान में और पूरे जॉ लाइन में पेन हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि कोई नहीं, अभी सदगुरु भगवान जी का दर्शन करेंगे ना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, चलो चलो करके मैंने उसको पुश करके स्टेज पे मैं ले गई। और उसको स्वामी जी का दर्शन हो गया, संत प्रवर जी का दर्शन हुआ। तो संत प्रवर जी ने उसको ऐसे ऐसे करके गाल पे 2 बार प्यार किया। तो ये थोड़ा डाउन था, तो बोले आप कैसे हैं। तो मैंने कहा भैया जी, उनको उसको थोड़ा दर्द हो रहा है अभी कान में, इसलिए वो थोड़ा अभी डाउन है। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए और अमृतवाणी कंप्लीट होते होते रियांश फिर से सो गया था। जब उठा तो कहता है मम्मा दिस इज रियली मैजिक, कहने का तात्पर्य है कि ये तो रियली मैजिक है, मुझे स्वामी जी ने ऐसे टच किया तो मेरा सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये एक छोटे से बच्चे के स्टैंड पॉइंट से हम लोग देखें अगर, तो मैंने उसको उस टाइम पे शक्ति में तो खैर मुझे कोई डाउट ही नहीं है, मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। फिर 20 को जब स्वामी जी का दर्शन हम लोगों को शाम को हुआ सबको, तो वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एपिसोड हुआ कि जब हम निकल रहे थे तो संत प्रवर जी कहीं से आ रहे थे, तो हमने संत प्रवर जी को भी प्रणाम किया उस वक्त। और उस टाइम पे वो रियांश को इतनी भीड़ में इतने सारे लोग थे जितने लोगों ने स्टेज पे उस दिन दर्शन किया होगा, तो रियांश को ऐसे फिर से प्यार करके वो कहते हैं और आपके कान का दर्द ठीक हो गया ना। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ये सारी चीजें इंडिकेटिव होती हैं कि वो जो सत्ता है वो सर्वव्यापी है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती है, नए साधक हैं पुराने साधक हैं, जो जितना डिजर्विंग होता है उसको उस हिसाब से सद्गुरु का कृपा हमेशा बना हुआ होता है हम पे। जय सद्गुरुदेव।
धन्यवाद शिखा जी, बहुत ही टचिंग संस्मरण था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो साधना के लिए सबसे बड़ा अच्छा होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि 3 से 5 बजे के बीच में होता है सुबह। लेकिन ज्यादातर लोग, हम में से ऐसे ज्यादातर लोग हैं कि वो इसमें इसका लाभ उठाने में असफल रहते हैं। तो इसीलिए हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने वॉरियर ऑफ द वीक के कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें जो प्रतिभागी होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद वॉरियर्स ऑफ द वीक करके व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे सिर्फ डन का मैसेज डालते हैं। यहाँ पे कोई सेशन ज्वाइन नहीं करना होता है, आप अपने समय से 3 से 5 के बीच में साधना करके फिर उस ग्रुप में डन का मैसेज डालते हैं। तो इस वीक के वॉरियर्स हैं भगवती पटेल जी, देव जी, मेरा नाम भी है, सूर्या आलम राजू जी, सुधांशु कुमार जी, तेजिंदर जी, योगेश क्षीरसागर जी। तो इन सब ने पूरे वीक हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसके साथ ही इंडक्टीज ऑफ द वीक है, तो ये ऐसे साधक हैं जिन्होंने कम से कम एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना की है। मैं देखता हूँ कि ये नाम हमेशा ही वॉरियर्स ऑफ द वीक में होते हैं, तो कभी कभी होता है कि जीवन में ऐसा समय आता है जिसकी वजह से हम एक एक आध दिन हमारा मिस हो जाता है। बट आप सबका भी धन्यवाद, आप भी हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं, दिखाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना संभव है, और हमारे जैसे ही काफी सारे लोग होते हैं वो ये कर पाते हैं, तो इससे हमें ये प्रोत्साहन मिलता है, शक्ति मिलती है कि हाँ हम भी इसको कर पाएंगे। तो इंडक्टीज ऑफ द वीक है अमित तलेकर जी, अनुमय जी, लाल मणि जी, मोनिका जी, राधा जी, रंजनी जी और रश्मि जी। तो अनुमय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं सद्गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना रखना चाहूँगा कि हम ऐसे ही युवा पीढ़ी को इस स्लाइड पर देखते रहें। तो अभी हम सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हम सत्संग की जो सांगता है उसको गुरु वंदना, आरती और शांति पाठ से करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु के चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। तो गुरु वंदना के लिए मैं सूर्या जी से निवेदन करूंगा कि आप गुरु वंदना प्रस्तुत करें।
जय सद्गुरुदेव। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जीविनाध्य आसित सिंधु के है विश्वपथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिना कीजिए। सदगुरु भगवान की जय। बैक टू यू श्रीरंग जी।
धन्यवाद सूर्या जी। अभी हम चलते हैं आरती की तरफ। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं फिर से सूर्या जी से निवेदन करूंगा कि आप आरती की अंतिम लाइनें सद्गुरु के चरणों में अर्पण करें और सभी
जय
लोगों से
सतगुरुदेव।
निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए।
गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्टचक्र सब शून्य पर धर अधरा के पार तहा सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार भूली पड़ा संसार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर शांति पाठ के लिए बैठ जाएं। और शांति पाठ जो है हम विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए करते हैं। तो फिर से सूर्या जी से निवेदन है कि वे शांति पाठ की अंतिम चार लाइनें प्रस्तुत करें।
जय सद्गुरुदेव। हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांतिमय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सर्व अशांति देव सदा फल शांति मया शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू श्रीरंग जी। थैंक यू।
धन्यवाद धन्यवाद सूर्या जी। आपने बहुत ही भावपूर्ण वाणी से और भक्ति भाव से गुरु वंदना आरती और शांति पाठ प्रस्तुत करके इस सत्संग की सांगता की। यहीं पर हम सत्संग के समाप्ति की घोषणा करते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके निरंजन जी, गीत जी, शिखा जी और राज जी, मोनिका जी, आपके आपने बहुत ही भावपूर्ण संस्मरण आज प्रस्तुत किए और ये हमारे सामने फिर से रखा कि कैसे सद्गुरुदेव की कृपा सारे भक्तों शिष्यों पर हमेशा रहती है। तो इसी इसी भाव के साथ हम इस सत्संग को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका आने वाला दिन और सप्ताह मंगलमय और अध्यात्मपूर्ण हो। और ये सत्संग हम कल भी करेंगे इंग्लिश में, तो आई थिंक देव जी कल अपना संस्मरण सुनाएंगे, वो अपना अनुभव सुनाएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कल फिर से जुड़े इंग्लिश सत्संग में, ताकि हम देव जी और जेसिका जी से सुन पाए कि उनका अनुभव कैसे रहा। तो वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनके जैसा हमें शिष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है कि मुझे उनकी बनना चाहिए, क्योंकि वो कमी मैं महसूस करता हूँ खुद में। तो डेफिनेटली मैं उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहूँगा, उनसे सीखना चाहूँगा कि किस तरीके से सद्गुरु चरणों में समर्पण करना होता है। तो इसी के साथ हम सत्संग की सांगता करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय सद्गुरुदेव।